समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज 2 फरवरी 2026 है, सोमवार की सुबह। आज सवेरे कार्यक्रम के बजट विशेष अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज, और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना।
हेलो मनोज, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू टुडेज स्पेशल एडिशन ऑफ आज सवेरे। यस्टरडे वाज अ लैंडमार्क डे फॉर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड हर 9th कंसेक्यूटिव यूनियन बजट फॉर द ईयर 2026-27।
बिल्कुल तन्वी, ये बजट युवा शक्ति से प्रेरित और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला बजट है, जिसमें विकसित भारत 2047 की रिफॉर्म एक्सप्रेस की बागडोर देश की युवा शक्ति के हाथों में जाती दिखाई देती है। आज के इस विशेष अंक में हम बजट की बारीकियों को समझेंगे और कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों से जानेंगे कि उनकी देश के इस आर्थिक रोड मैप को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं।
Absolutely, Manoj. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlighted that this budget is driven by 3 kartavyas: accelerating economic growth, building capacity, and providing opportunities to each and every sector.
इस बजट के मूल दर्शन और 3 कर्तव्यों को विस्तार से समझा रही हैं केंद्र सरकार में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव सुश्री अनुराधा ठाकुर।
The 3 kartavya that FM pointed out in her budget, they are actually the basic spirit of the budget itself, that it is the government's responsibility to give the country stable, high level of growth for the next few years. This budget plans for that, to take measures to fulfill the aspirations of an increasingly young and ambitious and aspiring India through focusing on very niche sectors within the services sector. And while doing that, ensuring that there is inclusive growth, sabka saath, sabka vikas, the 3rd kartavya emphasizes that. So in a nutshell, that actually captures the essence of the budget.
So Manoj, a major highlight of this year's budget is the massive push to the capital expenditure, which has been pegged at 12.2 lakh crore rupees, the highest in a decade.
Ye GDP ka 4.4% hai. इस निवेश का बुनियादी ढांचे और विकास पर क्या असर होगा, इसके बारे में आकाशवाणी समाचार को बताया व्यय सचिव वी वुलनाम ने।
While growth is essential, the government has also maintained a strict balance with fiscal prudence, aiming for a fiscal deficit of 4.3% of the GDP. Talking exclusively to Akashvani News, Dr. Arunish Chawla, Secretary of Department of Investment and Public Asset Management, DIPAM, explains this balance and the role of asset monetization.
We've set up an aspirational target, that's for sure, and that's because we have worked out a composite strategy and we are confident of achieving it. The 80,000 crore miscellaneous capital received is essentially various forms of asset monetization, which includes traditional modes like disinvestment, market sales and land sales, land monetization. It also includes new and innovative ways of monetizing assets. And essentially what this would mean is monetizing the present value of their rental revenue and using it to create and redevelop those assets so that the assets which are unproductive come into productive use of the economy. And putting together the traditional and these innovative modes, we hope to achieve the 80,000 crore target next year.
इस बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के SME ग्रोथ फंड की घोषणा की गई है।
I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria.
Absolutely. We have a lot more to tell about these significant measures to support enterprises and the banking sector. In a special interaction with Akashwani, M. Nagarju, Secretary, Ministry of Finance, shared his thoughts on these significant measures in the budget to support micro, small, medium enterprises.
We have about 4.5 crore MSMEs in the country, and they also contribute about 30% of the total employment in the country and 40% of total exports. That way, the MSMEs' contribution is hugely significant. Government, the last 10 years, has always come up with new ideas to support MSMEs at multiple stages. Now, today, in fact, the last quarter, we have outstanding credit of 37 lakh crore. To the MSME from the banking sector. That's the highest. And this year, MSME credit grew at 17%. Again, this is the highest ever. The government has been providing a lot of priority to that. The total guaranteed loans to the MSMEs now, as of last month, is 6 lakh crore currently. The idea is to identify such MSMEs who can be supported through both the debt and the equity and other support systems so that they will be able to capture export market in the rest of the world.
So we have Dr. Arunish Chawla, and he's talking about fiscal prudence versus growth.
If you see, the debt GDP ratio is on track to achieve the 50% level by 2030. And the way I see the budget is a definitive step towards a Viksit Bharat. It contains a number of those elements. The three kartavya essentially mean we strike the right balance, we achieve growth that is inclusive for an aspirational India.
इतना ही नहीं, सरकार का बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की मंशा इस बजट में साफ नजर आई है और बजट में बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव है.
There is definitely a need for having an expert committee. The current ecosystem that we have, perhaps that may not support the aspirations of the country. Therefore, it was felt that there is a need to lay out the roadmap, how we are going to improve the financial sector, especially the banking sector. Therefore, the commitment was made to form a panel, expert committee, to make a recommendation to the government.
This budget provides a massive thrust to manufacturing, particularly in the electronics sector, with an outlay of 40,000 crore rupees. Ms. Anuradha Thakur shares insights on this particular push.
Thrust of the government on manufacturing started with the Make in India in 2014. And ever since then, it's been more than 10 years of pursuing an emphasis on manufacturing. In the last 5 years, I would say, there has been a much more thrust again on manufacturing, particularly on semiconductors, electronics, etc. This budget re-emphasizes and continues that thrust, particularly in specially selected strategic and frontier sectors where we need to create a niche, we need to create buffers, and we need to ensure that our critical import dependencies in an uncertain world comes down and we build that resilience in our own country. This way, the budget has tried to create strategic frontier manufacturing sectors, which the government will support. It will have the advantage, apart from what I had outlined, also of getting in technology, building technology capability ourselves, as well as drawing in private investment in niche and specialized sectors.
A couple of minutes back, we told you that Finance Minister Nirmala Sitharaman highlighted that this budget is driven by three kartavyas. So let's hear a bite.
This is the first budget prepared in Kartavya Bhavan. We are inspired by three kartavya. Our first kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation.
कृषि के मोर्चे पर भी सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की प्रतिबद्धता इस बजट में साफ दिखी है, जहां प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग पर जोर दिया गया है। सुनते हैं इस विषय पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र के विचार।
एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरे विचार में रिफॉर्म बड़े जरूरी है, तभी आप देखोगे कि वहां इन्वेस्टमेंट आएगी। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं, यदि हम कहें कि हम तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाएंगे, कोई भी आदमी इससे ऊपर करेगा तो जब हमें दिल करेगा हम उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो है इंक्लूड कर देंगे। तो यदि हम यूनिक और इतना बड़ा को इन्वेस्टर चाहते हैं और हम बैन लगा देते हैं आपके यहाँ 250 क्विंटल से ज्यादा बासमती राइस नहीं हो सकता, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो ये रिफॉर्म लाना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे उसको लाना, लिबरलाइज करना, एक्सपोर्ट को लिबरलाइज करना, इनको डील करने के तरीके हैं। हमें उस तरीके से करना चाहिए, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को बैलेंस कैसे करें, लेकिन मेरे विचार में ये इस सेक्टर में रिफॉर्म बड़े जरूरी है।
पहले जब से ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ हमारी डिपेंडेंस केमिकल फर्टिलाइजर पे निरंतर तेजी से बढ़ रही थी। वर्ष 11-12 के बाद उसमें एक मोड़ आया। वो मोड़ ये है कि पिछले 13 साल में जो हमारे सिंथेटिक फर्टिलाइजर हैं बहुत सारे, उनमें जो वृद्धि हुई है 13 वर्ष में केवल 6% ग्रोथ हुई है, लेकिन जो हमारे कंपोस्ट है, फार्मिंग और मनोर है, उसमें 25% की वृद्धि हुई है। मुझे ये बहुत पॉजिटिव चेंज नजर आई कि वास्तव में ही मास लेवल पे इस ओर एक मूवमेंट चल पड़ा है, इस चीज के बावजूद कि हम यूरिया पर 80% सब्सिडी देते हैं।
And Manoj, now comes the most awaited segment of the budget, the tax. This budget has decriminalized the income tax and giving facility to the taxpayers. The budget focuses on the ease of compliance.
In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements.
Talking exclusively to Akashwani News, Central Board of Direct Taxes, CBDT Chairperson Ravi Agarwal shares how the budget aims to decriminalize the income tax process.
जब इनकम टैक्स एक्ट 61 को हमने सरलीकरण किया था और इनकम टैक्स बिल 2025 जब हम लाए थे, इसको कि पार्लियामेंट में पेश किया था पिछले साल हमने फरवरी में, अगस्त 2025 में वो एक्ट बना, इनकम टैक्स एक्ट 2025। पहले हम, मैं कहूंगा कि इस बजट में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स को जितने प्रावधान थे उनका किया गया। 61 के एक्ट में जो प्रोसिक्यूशन प्रावधान थे उसमें जो डिफॉल्ट्स थी उसमें मिनिमम इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक का हो सकता, उसको अब खत्म किया गया है और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट को एकदम खत्म कर दिया गया। तो अब जो प्रावधान है वो है 0 year to 2 years या 0 year to 6 months डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी। रिपीट अगर ऑफेंस होगा तो वहां पर 3 साल हो सकता है, बट अदरवाइज 0 to 2 years इज द मैक्सिमम। और उसके अलावा पहले वाले एक्ट में प्रावधान था एंड फाइन, अब है और फाइन। सो अब फाइन पे करे कोर्ट जो है, अगर उसमें देखेगी डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, तो इस हिसाब से इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों को हमने ऑप्टिमाइज किया है। सो दैट इज मेजर डीक्रिमिनलाइजेशन का एफर्ट है, जो कि सरकार के जन विश्वास के कॉन्सेप्ट से भी जेल करता है।
इसके अलावा बजट स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलावों की नई गाथा लिखता नजर आया है, जहां कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाकर बड़ी राहत दी गई है। इन बदलावों का विस्तार से उल्लेख किया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने।
जहां तक कस्टम्स ड्यूटी के रेट्स के चेंजेस, जिसमें कंसेशनल ड्यूटीज काफी सेक्टर्स को दी गई है, उसके पीछे हर तरह से सरकार ने बड़ा नुआंस अप्रोच लेके चले हैं कि किस सेक्टर में क्या आवश्यकता है और उसी हिसाब से चलते हैं। डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखिए तो हमने कहा है कि अगर आपको रॉ मटेरियल पार्ट्स बनाने के लिए हवाई जहाज का चाहिए, जो डिफेंस सेक्टर में मेंटेनेंस के लिए हो, जो MRO ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए हमने कंसेशन दिया है कस्टम ड्यूटी के रेट्स में। कैंसर को फाइट करने के लिए 17 दवाइयां हैं, उस पर हमने कंसेशन दिया है, रेयर डिजीजेज होती हैं उनकी एक लिस्ट है, तो हमने उसमें 7 और नई रेयर डिजीजेज ऐड करी हैं कि अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाए किसी व्यक्ति के साथ, तो जो अगर वो इन डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसके इम्पोर्ट्स और फूड आइटम्स या जो मेडिसिन या ड्रग्स जो इसको ट्रीट करने के लिए चाहिए उसके लिए हमने उसमें कंसेशन दिया है। तो हर तरीके से बहुत ही स्पेसिफिक जाके हमने उसको देखा है कि कहाँ पर हमारी इंडस्ट्री को आवश्यकता है, या तो उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए, रेजिलिएंट होने के लिए, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए।
At the same time, mental health has also received unprecedented attention with NIMHANS 2.0. To tell us about this ambitious upgrade, let's hear the Chief Economic Advisor, Ananth Nageshwaran, who had exclusively talked to the Akashwani News.
The government is not paying attention to mental health only now. It has been doing so over the years. There are some hotlines established for students. The program that was also there in the part A of the budget speech was also about creating a care ecosystem, which also includes psychiatrists, because the number of these professionals per 100,000 population in India is lower than what's available elsewhere, and also educational institutions. So these are the kind of things that India has been, or Indian government has been doing. And this particular new institution being set up in the eastern part of India is another important milestone in mental health, because obviously that plays straight into the potential for translating our demographic dividend into reality. Without that, it won't happen. So it's a very important development, and it's a very important signal. That's also something that we need to keep in mind.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बजट सुरक्षा, विकास, आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है और राष्ट्र के हित में है।
इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है।
वहीं आत्मनिर्भर भारत के मजबूत संकल्पों द्वारा सेना के आधुनिकीकरण और सीमा की सुरक्षा पर विशेष बल देने के लिए रक्षा बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। सरकार के इस निर्णायक कदम पर हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं श्री वी वुलनाम।
The defense budget includes various components, and the most significant which we can discuss at this point is what we call the defense capex, and that portion in the budget for 26-27 is 2.19 lakh crore rupees, and it is a jump from the current year, and it is a recognition of the various strengthening that will be required in our defense setup. In fact, if you go back to the speech of the Honorable Prime Minister on Independence Day, it's all a step towards gearing up to meet that kind of new scenario, to be fully prepared to keep the country safe.
Commerce and Industry Minister Piyush Goyal termed the budget for future ready Bharat.
I would term this budget as a budget for future ready Bharat, right from manufacturing to services to export to women, self-help groups, education and skilling, fishermen, animal husbandry, and promoting new age technologies. I think this is truly a budget which strengthens our resolve for Viksit Bharat 2047.
रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा कि ये विकसित भारत के लिए रोड मैप तैयार करेगा। उन्होंने बजट में देश भर में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की।
7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स की घोषणा की है, चेन्नई बेंगलुरु। इससे चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में यात्रा 1 घंटे 13 मिनट की हो जाएगी। बेंगलुरु से हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी। फिर मुंबई से पुणे मात्र 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट। तो एक तरीके से मुंबई, पुणे, हैदराबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त करता है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत में परिवर्तनों को नवीन ऊर्जा और गति प्रदान करेगा।
ये बजट गरीब अन्नदाता युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है।
And as we wrap up our analysis, let's look at the overall takeaways that will define the Indian economy in the upcoming year. Here is the Chief Economic Advisor Anant Nageshwaran with his thoughts.
I think the first thing it does is to basically continue with the tradition of fiscal prudence. Having done a lot of hard work in the previous 5 years, bringing the ratio of fiscal deficit to GDP from 9.2 to 4.4, it continues but gradually slows the pace. But there is no attempt to deviate from the path because there is a goal of 50% of GDP for the debt ratio by 2030-31. That is one. The second thing the budget does is to sort of quietly understand the geopolitical environment and prepares the country for the long term to have a certain sense of resilience and build buffers in manufacturing critical materials, whether it is health or whether it is manufacturing, etc. And also arranges the tax affairs in such a manner that these materials are available to us slightly more cheaply than before and can also incentivize manufacturing of them in the country. So it builds on resilience. So I would say therefore the two main things for me is fiscal continuity of prudence and second, quietly building the layers of resilience for the Indian economy for the long term.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट संसद में पेश किया। क्षमता निर्माण और सुधारों पर बल, इसे युवा शक्ति से संचालित बजट बताया। वित्त मंत्री ने कहा, बजट आर्थिक वृद्धि, आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना के तीन कर्तव्यों से प्रेरित, इससे प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र को संसाधन, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध होंगे। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव, वस्त्र क्षेत्र के लिए बजट में राष्ट्रीय फाइबर योजना और राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम को बढ़ावा के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। श्रीमती सीतारामन ने कहा, SME ऋण लेने वालों के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष की स्थापना की जाएगी। अगले 5 वर्ष के लिए बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के गठन की घोषणा, वर्तमान 7 संस्थानों को उन्नत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने लगातार 9वें बजट में इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया। बजट 2026-27 के आज सवेरे कार्यक्रम के इस विशेष विश्लेषण अंक में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि बजट की इन बारीकियों ने आपको भविष्य की आर्थिक तस्वीर समझने में मदद की होगी।
And exactly what Manoj said, let me repeat it once again. That's all for today's budget special edition of Aaj Savere program. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. For more updates and detailed analysis, keep listening to Akashwani and follow us on our website newsonair.gov.in. I'm Tanvi Khurana.
And I'm Manoj.
Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.